दोनों काफी देर तक वहीं बैठे, छोटी छोटी बातें करते रहे। अचानक अरमान बोला, अपनी आंखें बंद करो। क्यों? नूर ने हैरानी से पूछा। करो तो सही। नूर ने हिचकते हुए अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। अरमान ने जेब से एक छोटा सा पाउच निकाला, उसके अंदर चांदी की पायल थी। वो धीरे धीरे नूर के पैरों में पायल पहनाने लगा। नूर ने अचानक आंखें खोल दीं। मेरे पैर क्यों छू रहे हो? अरमान मुस्कुराया। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। नूर ने पायल को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। बहुत खूबसूरत है। अरमान ने उसके दोनों पैरों में पायल पहना दी। शुरुआत में तो अरमान का इरादा कुछ और था। वो बस नूर को थोड़ा नीचा दिखाना चाहता था, उसे परेशान करना चाहता था। मगर अब धीरे धीरे उसके दिल में नूर के लिए सच्ची भावनाएं पैदा होने लगी थीं। अरमान ने धीरे से कहा, नूर, एक दिन मैं जिंदगी में कुछ बन जाऊंगा, फिर देखना, मेरा नाम और तुम्हारा नाम साथ लिया जाएगा, और मैं किसी को भी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करने दूंगा। नूर हल्की हंसी के साथ बोली, अभी भी सब मेरे रिस्पेक्ट करते हैं, सब मेरी फिक्र करते हैं। अरमान ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, सिर्फ रेहान भाई को छोड़कर कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। असल में अरमान को लगता था कि रेहान नूर के लिए बहुत सख्त है, वो उसे रोकता है, टोकता है, इसलिए अरमान को लगता था कि रेहान बस उसकी फिक्र करता है, जबकि सच्चाई कुछ और थी। आने वाला वक्त ही बताएगा कि कहानी किस मोड़ पर जाएगी। और दूसरी तरफ फैजान अभी तक वापस नहीं आया था। फैजान अपने घर पहुंचा, उसी घर में जहां उसका जन्म हुआ था। जब तक उसके अम्मी अब्बू जिंदा थे, वो इस घर का शहजादा था। उसके दादा का बहुत बड़ा बिजनेस था, जिसे बाद में फरीद खान और नासिर खान ने हड़प लिया था। अब तो हालत ये थी कि इस घर को भी गेस्ट हाउस बनाने की बात हो रही थी। फैजान को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका अपना घर अब उससे छीनने वाला है। वो धीरे धीरे चलकर उस जगह के पास गया जहां उसके अम्मी अब्बू की तस्वीरें टंगी हुई थीं। तस्वीरों के सामने खड़े होकर उसकी आंखें भर आईं। अम्मी, अब्बू, मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूं। जब लौटूंगा तो एक ऑफिसर बनकर लौटूंगा। आप दोनों का सपना पूरा होने वाला है। इतना कहकर उसने दोनों तस्वीरें दीवार से उतार लीं, क्योंकि वो जानता था कि अब यहां बहुत कुछ बदलने वाला है। फैजान वहीं फर्श पर बैठ गया। काफी देर तक वो अपने अम्मी अब्बू की तस्वीरों को सीने से लगाए रोता रहा। रात काफी हो चुकी थी। माहिरा किचन से पानी पीकर अपने कमरे की तरफ लौट रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उधर जुबैदा बेगम भी जाग रही थी। उन्हें पता चल चुका था कि फैजान अरमान की गाड़ी लेकर गया है। उनके लिए ये बात सहन करना मुश्किल था कि फैजान उनके बेटे की गाड़ी ले जाए। सुनो मीरा, जुबैदा बेगम ने आवाज दी। जी अम्मी, मीरा रुक गई। क्या फैजान अरमान की गाड़ी लेकर गया है? उन्होंने गुस्से में पूछा। जी, वो मुझसे पूछ कर ले गया है, माहिरा ने शांत आवाज में कहा। और वैसे भी वो गाड़ी तो खराब पड़ी थी, वरना वो उसी में आता जाता है। जुबैदा बेगम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मेरा दिमाग खराब कर दोगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे अरमान की चीजों को कोई हाथ लगाए, ये बिल्कुल पसंद नहीं। जुबैदा बेगम की बात पर माहिरा ने ताना मारते हुए कहा, मेरी जिंदगी तो पहले ही खराब कर दी, फैजान से मेरा निकाह करवा कर। माहिरा की आंखों में एक पल के लिए दर्द चमका, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आपको अपनी गाड़ी की पड़ी है, माहिरा ने धीरे से कहा। उसे फैजान किसी भी तरह से पसंद नहीं था। आपकी जिंदगी तब खराब होती अगर तुम्हारा निकाह रेहान से हो जाता, जुबैदा बेगम ने माहिरा से कहा। तुमने देखा नहीं, सादिया पूरे दिन रेहान के इर्द गिर्द घूमती रहती है, फिर भी रेहान कभी खुश नहीं रहता। सादिया से उसके नखरे ही ठीक नहीं आते, तुम किसके नखरे उठा सकती थी? आगे जुबैदा बेगम ने हल्की कड़वाहट के साथ आगे कहा। और फैजान, वो तो इतना सीधा है कि तुम जो चाहूं कर सकती हो, वो बेचारा तो मुझे कुछ कहता भी नहीं। जुबैदा बेगम ने ठंडी सांस ली और बोली, इसलिए मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हारा निकाह फैजान से कराया। आप उसी फैजान की बात कर रही हैं जो बस अरमान की गाड़ी क्या ले गई? आपने पूरा फसाद खड़ा कर दिया, माहिरा ने गुस्से से कहा। लेकिन ये बात कि वो मेरी जिंदगी में आ गया है, उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता? जुबैदा बेगम ने उसे घूर कर देखा। देखो माहिरा, अभी उसे फोन करो और कहो कि वो फौरन गाड़ी वापस लेकर आए, उन्होंने सख्त आवाज में कहा। जुबैदा बेगम ने माहिरा को ताना मारते हुए कहा, वैसे तो तुम्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं, फिर आपने उसे गाड़ी लेने ही क्यों दी? माहिरा कुछ बोलती उससे पहले ही जुबैदा बेगम फिर बोल पड़ी, अच्छा अब समझी, इसलिए दी होगी कि आखिर ये उसी के बाप का घर है जिसे तुम गेस्ट हाउस बनाने जा रही हैं। उसकी आवाज में कड़वाहट साफ थी। शायद आपको उस पर तरस आ गया होगा। जुबैदा बेगम की बात सुनकर माहिरा को गुस्सा आ गया था। मीरा ने जुबैदा बेगम को ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उधर जुबैदा भी गुस्से में अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा बंद करके वो बिस्तर पर बैठ गई, लेकिन उसका दिल अब भी गुस्से और उलझन से भरा हुआ था। खाना खाकर न्यारा लॉन में टहल रही थी, उसके साथ सुनीता भी थी। सुनीता अपने बेटे ज्ञान की बातें कर रही थी, वो थोड़ी ही देर में घर पहुंचने वाला था। न्यारा के मन में एक अजीब सी हलचल थी। एक तरफ उत्सुकता थी तो दूसरी तरफ डर भी कि जब ज्ञान आएगा तो उनके बीच का रिश्ता कैसा रहेगा। उधर सुनीता पूरे उत्साह से रिसेप्शन की योजना बना रही थी। अजय कपूर खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे तभी गेट पर गाड़ी रुकने की आवाज आई। कुछ ही पलों बाद टैक्सी से उतरकर ज्ञान तेजी से अंदर आया। उसे देखते ही सुनीता और न्यारा दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। दोनों गेट की तरफ बढ़ गईं। कैसी है मॉम? ज्ञान ने झुककर पहले सुनीता कपूर के पैर छुए फिर उठकर उन्हें गले से लगा लिया। जीते रहो बेटा, सुनीता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर ज्ञान ने मुस्कुराकर न्यारा की तरफ देखा। कैसी हो तुम? इतना कहते ही उसने न्यारा को भी अपने गले से लगा लिया। न्यारा ने सोचा भी नहीं था कि ज्ञान उससे इस तरह मिलेगा। एक पल के लिए वो चौंक गई फिर धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ। चलो बेटा पहले जाकर हाथ मुंह धो लो, तुम्हारे दादा भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, सुनीता ने कहा। ज्ञान ने सिर हिलाया और न्यारा से अलग होकर अंदर की ओर बढ़ गया। अंदर आकर ज्ञान ने अपनी मॉम से कहा कि वो खाना खाकर आया है। फिर वो अपने मॉम डैड से मिलता हुआ बोला, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। ठीक है बेटा, उसकी मॉम ने प्यार से कहा, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर ले आती हूँ। नहीं मॉम, न्यारा ने धीरे से कहा, मैं बनाकर ले आती हूँ। ज्ञान ने हल्का सा सिर हिलाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। न्यारा किचन में चली गई। जैसे वो पहले फ्लैट में उसके लिए कॉफी बनाया करती थी उसी तरह उसने कॉफी बनाई। थोड़ी देर बाद वो ट्रे में कॉफी लेकर ऊपर पहुंची। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो ज्ञान कपड़े बदल चुका था। उसे देखते ही वो मुस्कुराया, मैं तुम्हारी कॉफी को बहुत मिस कर रहा था। न्यारा बस हल्का सा मुस्कुरा दी। ज्ञान ने उसे गौर से देखा और बोला, अच्छा सच सच बताना, तुमने मुझे कितना मिस किया? न्यारा ने उसकी तरफ देखा पर कुछ बोली नहीं। ज्ञान हंस पड़ा, वैसे ऐसे क्यों देख रही हो? कानूनी हस्बैंड हूँ तुम्हारा, किडनैप नहीं किया मैंने तुम्हें, तुम्हारे मॉम डैड ने ही मुझसे शादी करवाई है, समझी? उसकी बात सुनकर न्यारा की झिझक थोड़ी कम हो गई। ज्ञान ने अपनी कॉफी का कप उठा लिया और न्यारा की तरफ देखते हुए कहा, आओ ना यहाँ बैठो। न्यारा धीरे से बेड पर आकर बैठ गई। वैसे तो आजकल दोनों रोज फोन पर बात करते थे मगर सामने देखकर एक अलग ही खुशी थी। फिर भी न्यारा के दिल में हल्की सी घबराहट थी। शादी के बाद आज पहली बार दोनों एक कमरे में एक साथ थे। शाम को फोन आया था। ज्ञान ने कॉफी पीते हुए कहा, डेट फाइनल हो गई है शादी की। निया और शाम की शादी की हो रही थी, उनकी शादी की डेट भी इसी हफ्ते है, न्यारा ने कहा। ज्ञान मुस्कुराया, अच्छी बात है, हम दोनों दोस्तों ने दो सगी बहनों से शादी की है।
उम्मीद करती हूँ मेरी ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी।